ओम शांति। अभी हम भारतवर्ष से बाहर लंदन से पढ़ने के लिए अपने बीच में ऐसे अनुभवी अनमोल प्यारे बाबा के रत्न को अपने बीच में पा रहे हैं, जिनको बड़े प्यार से ब्राह्मण परिवार वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी गोपी दीदी के नाम से जानते हैं। हम सभी ब्रह्मावत्स वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमारी गोपी दीदी, जो यूके लंदन से भारत में आकर हमें ये सेवाएं दे रही हैं, हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रही हैं, वरिष्ठ दादी दीदियों के निकट सानिध्य को पाकर आप उनके गुणों की मूरत बनी हुई हैं। यज्ञ के भी अंदर व्यवस्थाओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, और आप अफ्रीका में जन्म लिया लेकिन ब्रिटेन और भारत में आप पली बड़ी हुई, पढ़ाई की, पाश्चात्य पूर्वी दोनों संस्कृति का समायोजन आपके जीवन में है। आप ज्ञान को रचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया से और नई नई स्पष्टता से प्रस्तुत करती हैं, चिंतन करती हैं, दृष्टिकोण रखती हैं। आपने विश्व स्तर पर प्यारे बाबा की सेवार्थ भ्रमण किया है। आप विश्व स्तर पर मंत्रालयों और शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में अपनी सेमिनार वार्ताएं देती रही हैं, जिन सेमिनार वार्ताओं में आध्यात्मिकता के प्रति जागरूकता और नवीन सिद्धांतों से जिससे सामाजिक स्थिरता प्रदान हो उन पर प्रकाश डालती रही हैं, जिससे समाज में उन मूल्यों के द्वारा काफी संगठन मजबूत हुए हैं, और प्रभावशाली तरीके से आपने संस्था को प्रस्तुत किया है। आप निरंतर अध्ययनशील और नई नई खोज राजयोग के द्वारा करती रहती हैं। आपने ईश्वरीय सेवाओं में अनेक परिवर्तनकारी विविध क्षेत्रों में कार्य किए हैं, जिनमें से एक 1990 में ब्रह्मा कुमारियों युवा ब्रह्मा कुमारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा मंच IYF का निर्माण किया, और उसको आपने विश्वव्यापी स्वरूप देकर युवा ब्रह्मा कुमारी बहनों को पाश्चात्य संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में आप लंदन यूके से यहाँ भारत में पधारकर पांडव भवन मुख्यालय में रहकर विशेष सेवाएं दे रही हैं, जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आप संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों को निर्देशित करती हैं, जिसमें अभी-अभी हम देख रहे हैं कि ग्रामीण राजस्थान में आपने पहली पहल की है बायोगैस सॉलिड रिसाइकलिंग प्लांट, वो आपने ग्रामीण राजस्थान के लिए स्थापित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी भी वो व्यस्ततम मीटिंग में अपने महत्वपूर्ण योगदान को देते हुए आप सब के बीच पहुंची हैं। आपकी 3 दिन की निरंतर योग भट्टी के प्रकंपनों को अनुभव करते हुए वो हम सबको निरंतर सहज योगी जीवन के लिए सोल कॉन्शियस स्थिति कितनी अनिवार्य है उस पर मार्गदर्शना देंगी वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी गोपी दीदी, लंदन यूके। हम एक हाथ की ताली से पुनः दीदी से निवेदन करते हैं कि हमें निरंतर योगी बनने का मार्गदर्शन करें दीदी।
ओम शांति। कभी ऐसे लंबा परिचय सुनती हूं ना तो मैं सोचती हूँ किसका परिचय है ये। वही नहीं, और कभी कभी ऐसे लगता है कि किसी और का परिचय दे रहे हैं। सही बात है, इतना वंडरफुल बाबा है कि बाबा इतना कुछ करा लेता है कि सोच के बाहर है। हम यहाँ खड़े हम इतना सारा कुछ हुआ क्या, ऐसे लगता है कभी सच में। और ये जो निरंतर योग की अवस्था, देखो हमारे माइंडसेट में तो चाहे हम किचन का काम कर रहे हैं आत्माओं के साथ बात कर रहे हैं, चाहे हम क्लास में आ रहे हैं आत्माओं के साथ व्यवहार हो रहा है, चाहे हम ऑफिस में बैठे हैं आत्माओं के साथ व्यवहार हो रहा है। तो जब आत्म अभिमानी की दुनिया में हो तो योग तो निरंतर ही है ना। अभी हम जब सारा किचन का प्लानिंग पूरा 3-4 घंटा हुआ इधर, वहां से डायरेक्ट इधर आए, लेकिन वो आत्माएं हैं, यही आत्माएं हैं। अभी इसमें योग का फर्क क्या है बताइए, ये केवल स्थान बदला, ये लेक्चर है वो काम है। तो इसमें क्या योग टूटने की बात आती है क्या? आती है। योग तब टूटता है जब आपकी स्मृति कट होती है। देखो हर एक अपने दिल के अंदर देखे, जैसे आप सोच लो आपके दिल में कमरा है, ठीक है, अभी इस कमरे में कितने पार्टीशंस है, कितने डिविजन्स है, किस किस को कमरा बांट लिया है। चलो ये कमरा थोड़ा छोटे बच्चों के लिए है, ये बीवी के लिए है, ये हमारे आगे की पीढ़ी के लिए है। आपका दिल बटा हुआ है, इसीलिए जो वर्तमान समय आपकी प्रेजेंट इस घड़ी में आपकी स्थिति होनी चाहिए, स्मृति रहनी चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि आपने जिस जिस को जगह बांट दिया है दिल में, वो आपको खींच रहा है और आपकी स्मृति रिवर्स में जा रही है। समझ में आई बात ये? तो पहले पहले तो दिल से काम शुरू करना। हम सोचते हैं योग एक साइंस है, अरे भाई योग साइंस नहीं है, दिल का प्यार है। फर्स्ट कम दैट, वो दिल का प्यार जुड़ा रहे, इसके लिए पहले अंदर दिल में जाकर के जहां पे भी आपने पार्टीशन डाला है, जो आपने कुछ चीज छिपाई है, उसको कैंसल करना पड़ेगा, खुली जगह देनी पड़ेगी बाबा को। फिर बाबा अपने हिसाब से मकान बनाएगा। समझ में आई बात? आपके हिसाब से नहीं बनेगा। आपके हिसाब से बना तो इधर थोड़ा बांट लिया, इधर थोड़ा बांट लिया, बिल्कुल बेकायदे हुआ है। इसीलिए तो दिल इतना टूट गया है ना, और हमको अंदर से खिंचाव होती है, ये करो वो करो, यहां जाओ वो जाओ, क्या करो आखिर। फर्स्ट फाउंडेशन जो हमने दादियों में देखा है, एवरीथिंग समर्पण, टोटल बैरियर खत्म, पार्टीशन खत्म, किसको नहीं देना है, एक बाप को सब कुछ हवाले करना है। समझ में आई बात? जब सब कुछ एक बाप के हवाले कर देंगे, वो खुला मैदान बाबा को दे दो, फिर आप देखेंगे बाबा क्या कराता है। हमने तो हमारी पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी, आधे रास्ते लॉ छोड़ करके हम आए बाबा के पास, लेकिन कितना कुछ बाबा ने कराया है। हमने कभी खुद के लिए प्लान भी नहीं बनाया है, मुझे ये करना है, यहां जाना है, वो करना है। एक दफा हवा कर लिया, आपको जिस तरीके से चलाना है, जहां बिठाना है, ये मेरा वायदा है। तब जाकर के आपका योग स्थायी रहेगा और आप ईश्वर का मैजिक देख सकेंगे। नहीं, अभी क्या होता है, दिल टुकड़ा टुकड़ा बटा हुआ है, तो आपकी भावनाएं भी बटी हुई है ना। फुल लव नहीं होता है ईश्वर के पास, फुल भावना नहीं है, थोड़ा डाइल्यूशन हो गया है, क्योंकि प्यार बटा हुआ है ना। इसको बिठाया इधर, इसको बिठाया इधर, इसको बिठाया इधर, प्यार बटा हुआ है। तो फुल लव न होने के कारण क्या होता है, फुल सेवा भी नहीं होती है। सेवा माना क्या? हमको याद है बहुत साल पहले शुरू शुरू में जब नए नए आते थे विदेशी, तो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी जी बैठते थे, थोड़ा बहुत 8-10 का ग्रुप था। उसमें से बड़ी दादी आती थी, दादी प्रकाश में आती थी, सेवा का चार्ट पूछती थी, ठीक है। लेकिन फिर दीदी पूछती थी कि रियल सेवा क्या है। चलो आपने इतने सारे लोगों को परिचय दिया है, लेकिन इसमें से कितने बाबा के नजदीक आए हैं, संबंध में नजदीक आए हैं, वो कितने आए हैं, गिनने चुने होंगे। सेवा माना क्या? जो विश्वास बाबा हमारे में रख रहे हैं, वो ही विश्वास औरों को मिल रहा है। जो भावनाएं हम बाबा से ले रहे हैं, वो ही भावना औरों को मिल रही है। अभी आपने ही अपने दिल में सारा पार्टीशन करके रखा है, तो औरों को क्या पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा? और वो सेवा भाव उत्पन्न ही नहीं होंगी कि मैं कुछ करूं। हमारी दादियां देखो, मैं आपको दादी जानकी अमेजिंग पुरुषार्थ थी। हम दादी का पुरुषार्थ देखते थे। दादी इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हर एक का अपना अपना है, लेकिन जो इनकी जो लगन की पुरुषार्थ सिंसेरिटी होती थी, आप सोचो 59-60 की उम्र में दादी जी आए लंदन 1974 में। 1974 से लेकर के 40 साल तक विदेश में रहे और विदेश की सेवाएं फैलाई, सपोर्ट दिया, 120 देशों का चक्कर लगाया, इसलिए आज 120 देशों में हमारे सेवा केंद्र है। सारा विश्व का भ्रमण किया दादी ने उस उम्र में, 61 से 104 तक दादी ने हड्डी मेहनत की है, 10 गुना 50 गुना जो भारत में करते थे उससे ज्यादा। अभी आप सोचो, यहां पे कोई 60 साल की उम्र में होता है, क्या होता है, क्या होता है, हाँ रिटायर होते ना, चलो बहुत कर लिया है ना जिंदगी में, थोड़ा अभी इसका फल खाए, आराम खाए, ये ईश्वर का राइट हैंड नहीं कहेंगे उसको। ईश्वर का राइट हैंड वो है जो ऑन गॉडली सर्विस टिल लास्ट ब्रेथ। बाबा को फिर आपको किस टाइम पे लेके जाने, वो अपने टाइम पे लेके आपको जाएगा, लेकिन लास्ट श्वास तक सेवा, क्योंकि बाबा खुद हमारा सर्वेंट बन के आया है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं? आप कह सकते हैं आप सेवा कर रहे हैं? जब खुद भगवान सर्वेंट बन के आया है तो आप कौन हो? मास्टर सर्वेंट हो ना, माना ऑन ड्यूटी 24/7, समझ में आई बात? लेकिन क्या होता है, कभी कभी सर्वेंट में लोभ आता है, लालच आता है, अलबेलेपन आता है, छोड़ दो ना भाई, ये काम पूरा नहीं करना, कुछ काम संपन्न एक्यूरेट करते ही नहीं है, छोड़ दो ना, दिल नहीं कहता है ना, मुझे अपने हिसाब से जीने दो ना, कहां तक गाड़ी चलेंगी ऐसे? इसमें ना आपकी कमाई हो रही है, ना आप इधर के ना आप उधर के, वो जितनी अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया के बस सुख नहीं हो रहा है, तो कहां है, बीच में लटके हुए हैं, समझ में आई बात? तो इसीलिए आप जहां पे आप बहुत लक्की हो, पांडव भवन में आए हैं, फर्स्ट प्लेस आपको दिल में दिल खोल करके खुला मैदान देना पड़ेगा बाबा को, ले लो ये आपका है। माना जिसके लिए आपने सोच विचार रखा है, भावनाएं थोड़ी छिपा करके रखी है, वो भी अर्पण करना पड़ेगा, चिंताएं भी अर्पण करनी पड़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है। इसीलिए तो हम देखते हैं ना, दादियों में इतनी फुल पावर आ गई ना, बाबा ही उनको चला रहे थे। दादी जी का तो स्वास्थ्य इतना भी ठीक नहीं था, बचपन से लेकर के न्यूमोनिया होता था, ब्रोंकाइटिस होता था, इधर क्रैक था, उनको हर तीन तीन चार चार मास इन पेन का इंजेक्शन देते थे। फिर भी आप देखेंगे रात को दर्द, सवेरे जैसे कुछ हुआ है नहीं, बादाम दे रहे हैं सभी को। हम पूछते दादी दर्द, अरे भाई वो आता है जाता है पता भी नहीं चलता है। इतना तक बाबा उनका संभाल कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसने खुला दे दिया ना, डर क्या है, भगवान के हाथ में दे रहे हैं, विश्वास नहीं है कि वो संभालेगा या नहीं, मुझे अपना थोड़ा कुछ संभाल के रखना पड़ेगा, आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। ये पूरा यज्ञ विश्वास निश्चय से चला है। आप सोचो ब्रह्मा बाबा हैदराबाद सिंध में उनका अपना घर था, चलो कलकत्ता में उनका बिजनेस था, लेकिन बड़े शानदार से रहे हैं बाबा। लेकिन जब ये शुरुआत हुआ, कितना ऑपोजिशन बाबा ने सामना किया। कोई और व्यक्ति होता ना तो इतना सहन नहीं कर पाता। हैदराबाद से ऑपोजिशन शुरू हुई, कोई मारने के लिए आया, घर को जलाया, वहां से निकले गए कराची, रेंटेड अकोमोडेशन, अपना भी घर नहीं। फिर बीच में उसने अपना बिजनेस पार्टनर को दे दिया कि चलो मैं तो वो ही स्वाहा करता हूं, तुमको जितना चाहिए तुम ले लो, मुझे बाकी का छोड़ दो। बिजनेस पार्टनर ने क्या लिया, 70% पूरा पैसे ले लिया, बाकी जो बचा कुचा सोना था, चांदी था, जेवर था, वो सब बाबा को दे दिया। लेकिन वैल्यू इतनी नहीं थी, फिर भी बाबा ने कुछ बोला नहीं, उसका है ना। जैसे टाइम बढ़ा, सोना चांदी की वैल्यू बढ़ी, धीरे धीरे बेच करके फिर कराची में जब आए तो फिर मकान लिए ना, रेंट पे मकान लिए ना, 14 साल तक तो यज्ञ चलाया ना वहां पे। फिर जब पार्टीशन का समय हुआ, देखो बाबा को हर स्टेप में चाहे ऑपोजिशन मिला है, चाहे रिजेक्शन मिला है, चाहे किसी ने उसको उनको धोखा भी दिलाया है, बाबा की अवस्था बदली नहीं की है। क्योंकि विश्वास निश्चय किसका काम है, ये कौन चलाने वाला है। जब भी वो पार्टीशन का समय था, तभी बहुत लोग जो 300 का ग्रुप था, उनके जो संबंधित इंडिया के तरफ थे, बुला रहे थे ना, तो इसमें से एक थी आत्मा जिन्होंने बाबा को बोला कि बाबा मैं आपका पूरा शिफ्टिंग का खर्चा मैं उठाता हूं, आप सभी को लेके आओ इंडिया में। मनमोहिनी दीदी को आगे भेजा, दीदी ने ये जगह सेलेक्ट की, बहुत सारी जगह देखी लेकिन ये सिलेक्शन किया। अभी आप सोचो 300 लोगों को एक पूरी स्टीमर हायर करो, वहां फिर पोर्ट में आओ, पोर्ट से फिर ट्रेन में सामान लेकर के इधर आओ, ये कोई मासिक का काम नहीं है, मासिक का घर का काम नहीं है, ये तो कितना खर्चा जाता है। और जब वो इंडिया में पहुंचे तो जिस आदमी ने प्रॉमिस किया था हाथ ऊंचा कर दिया, मैंने कहा आपको प्रॉमिस कुछ लिखत में तो है ही नहीं, आप होते उस जगह पे तो क्या होता आपका, एक सेकंड में हार्ट फेल होता, अरे क्या हो गया, देखो ना सी क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या है। फिर भी यहां पहुंच करके आधा से ऊपर ग्रुप भी चला गया। हम इतनी ठंडी में नहीं रह सकते हैं, इतने बेसिक कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। कई लोग तो बाबा को छोड़ के चले गए, जिन्होंने बाबा हाथ में पाले हुए हैं छोड़ के चले गए फिर भी। और एक बारी मुझे याद है, रमेश भाई ने, किसी ने रमेश भाई को पूछा था कि भाई साहब बेगरी पीरियड कितने समय तक चला, क्योंकि धन का भी लिमिट है, पूरा धन तो ट्रांसफर में गया, उनको पैसा तो नहीं मिला है, तो पूरा लगाना पड़ा जो था। तो बाबा का जवाब पता है क्या था? 6 घंटे, 6 घंटे का बेगरी पार्ट। तो फिर रमेश भाई ने पूछा 6 घंटा कैसे? बाबा ने बताया कि देखो सवेरे जब मुरली क्लास पूरा होता तो किचन में आए, तो भोली दादी ने उनके सामने बहुत पतली खिचड़ी रखी और एक सूखी चपाती, सूखी रोटी। तो बाबा समझ गया, फिर भोली दादी को पूछा बच्चे ने खाए, बच्चे ने नाश्ता किया? भोली दादी चुप रही, क्या बोले, कुछ है ही नहीं भंडारे में। तो बाबा समझ गए। फिर बाद में भोली दादी ने बताया बाबा कुछ नहीं है, दिन के भोजन के लिए भी कुछ राशन नहीं है। तभी जा करके बाबा साइलेंस में होकर के बोला 10 बजे की पोस्ट के लिए इंतजार करते, रिलैक्स। किसका यज्ञ है ये? 10 बजे की पोस्ट में और सारे कारोबार के पत्र आते हैं, उसमें से एक लफाफा आया जिसमें 250 रुपया था। नाम नहीं था किसका, लेकिन इसमें 250 रुपया था। उन दिनों में तो 250 रुपया बहुत। उस 250 रुपया से बाबा ने फिर भेजा भाव को बाहर, जाओ सब अनाज सब्जी सब कुछ खरीद के बच्चों को शाही भोजन दे दो, 6 घंटे का आपका बेगरी पीरियड। कोई और होता तो बोलता हाँ देखो ना कितना कष्ट हुआ हमको, सारा पैसा इसमें चला गया, हमको केवल इतना ही थोड़ा कुछ मिलना है खाने का। कुछ नहीं, अभी बाबा के सामने। तो ये यज्ञ किस आधार से चल रहा है आप मुझे बताओ, किस आधार से चल रहा है? संपूर्ण निश्चय विश्वास के आधार से चलता है। बाबा ने यज्ञ रचा है, हमको अडॉप्ट किया, जो हम किचड़े में पड़े थे। आपने थोड़ी बाबा को पहचाना, पहले बाबा ने आपको पहचान लिया है, ठीक है? बाबा ने आपका सही रूप पहचाना, ये रूप तो पहचान में नहीं आता है। जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है वो ही बाबा पहचानता है, समझ में आई बात? तो बाबा उसमें फेथ रखता है ना कि तुमने कितनी बारी किया है, कितनी बारी विजय प्राप्त करे, अरे उठो बच्चे उठो। तो पहला फेथ कहां से आया? ऊपर से यहां आया फेथ, समझ में? और आप इस नाम रूप में फंसे रहेंगे, मैं ये हूं, फलाना हूं, बिजनेसमैन हूं, वो हूं वो हूं, तो एक जन्म के नाम रूप में आप फंसे रहेंगे तो कैसे आप वो बेहद का विश्वास निश्चय महसूस करेंगे? पहले आपको अपने देह का नाम रूप का जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं हूं, मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं। तब जाकर के आप वो विश्वास बैठेगा कि हां बाबा मेरे साथ बात कर रहा है, केवल दादियों के साथ नहीं मेरे साथ बात कर रहा है, क्योंकि आपने हद को निकाला। समझ में आई ये बात? तो फर्स्ट स्मृति का स्विच ऑन करो, मैं कैसी आत्मा हूं, केवल बिंदु रूप नहीं, अरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा। क्या नहीं किया है मुझे बताओ, क्या नहीं किया है आपने? कुछ इम्पॉसिबल लगेगा क्या है ऐसी आत्मा के लिए? ऐसी आत्मा को कौन सा टाइटल देंगे आप? हाँ, ऑलराउंडर, और कौन सा टाइटल देंगे उसको? सर्वशक्तिमान, और कौन सा टाइटल देंगे? विजय रतन, पूर्वज, हीरो पाटदारी। तो क्या बाबा झूठ बोल रहा है? नहीं, आप अपने देह भान के जेल में बैठे हो, इस एक जन्म के नाम रूप के जेल में बैठे हो, इसीलिए आप एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? अभी सदा के लिए इस स्मृति को सेट रखना है, मैं कौन सी आत्मा, और आप देखेंगे ना इतना सहज और सरल रूप से काम होता है। मोहिनी दीदी, जब दीदी को पूछा गया था, आपको पता है ना कौन से मास में, शायद फ़रवरी मास में, वो अंतर्मुखता और एकाग्रता का विषय चला था ना अव्यक्त इशारा के लिए, तभी उसमें बाबा ने एक बारी बताया था कि सारा कारोबार अंडरग्राउंड करना है। तो हमने दीदी को पूछा कि दीदी प्रैक्टिकल रूप में जब आप फील्ड पे आते हो, आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई आपको पूछता है नया सेंटर लेना है, वे कहना है, तो ये अंडरग्राउंड थोड़ी हुई बात, आप थोड़ी गुफे में बैठ करके उसका डिसीजन लेना लेंगे, आप साइट पे जाएंगे, देखेंगे, ये तो ऊपर का काम है। तो दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि देखो अंडरग्राउंड माना हम वहां जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं जिन्होंने कोई ऑफर किया है कि ऐसा सेंटर, हम बैठ जाते हैं, फिर 5000 साल पहले क्या हुआ उसकी स्मृति का स्विच ऑन करते हैं, ये अंडरग्राउंड हो गया काम। समझ में आई बात, कि आपके मन बुद्धि ऊपर ऊपर में नहीं चले, बस ये कितना भाव है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना चलेगा, होगा नहीं होगा, इस तरीके से नहीं, साइलेंस में बैठ करके जाओ, अपने मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं, 5000 साल पहले क्या हुआ था, वेरी सिंपल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसमें बेहद की स्मृति रहती है, बाबा भी आ जाता है, टचिंग भी आती है आपको ऑटोमेटिक, और आपका दिमाग का, दिमाग की एनर्जी इतनी सेव हो जाती है, बात मत पूछो। समझ में आई ये बात? तो ये है अर्पण, सब कुछ, क्योंकि बात क्या है, आप सोचते हो क्यों, क्यों सोचते हो, कहां पे आसक्ति है कई बात की, कहां पे कुछ खींच है, कहां कुछ छिपा के रखा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे पिताजी ने जब शुरू शुरू में चंद्रमणि दादी जी आए थे अफ्रीका में, 17 साल तो पता नहीं है, 80 में कुछ था, तो हमारे पिताजी उस समय पे, उनका बिजनेस था ड्राइव इन सिनेमा का बिजनेस था, ठीक है, बहुत बड़ा, पूरे केन्या में उनका वो बिजनेस था, अलग अलग बड़े बड़े शहर में। अभी ड्राइव इन सिनेमा पता है ना, आप गाड़ी लेकर के अंदर जाओ, फिर वो स्क्रीन होता है। तो जब दादी को सब कुछ दिखाया ना, तो रात को वो ड्राइव इन सिनेमा का बिजनेस था, लेकिन दिन में उनका बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का बिजनेस था, वो केन्या पोर्ट्स अथॉरिटी, एविएशन अथॉरिटी को सप्लाई करते थे, उनके बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे क्योंकि वो इंजीनियर थे, तो दो बिजनेस चलते थे। लेकिन जब दादी आई और सब कुछ देखा, तो हमारे पिताजी को बोले, और उस समय हमारे पिताजी केवल 4 साल ज्ञान में थे, तो पिताजी को बोला, पता है ये क्या है, सिनेमा माना क्या है, सिन की मां है, ठीक है, तो भल आप डायरेक्ट फिल्म नहीं दिखा रहे, लेकिन जो कोयला बेचता है उसके हाथ भी काले होते हैं, समझ में आई बात है? तो जो देखेंगे उनकी लाइफ बिगड़ेंगी, आपके हाथ भी काले हो जाएंगे। ये पिताजी को इतना धक्का लगा कि तुरंत 3 मास के अंदर सारा बिजनेस वाइंड अप कर दिया। तब से लेकर के दादी उसको बहुत प्यार करती, ये निश्चय बुद्धि वाला है, बाबा बैठा है ना, डायरेक्शन मिला है ना। एक तरह हम भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, एक तरफ पाप करते जाए, दूसरे तरफ पुण्य करके आए, सब कैंसिल हो जाता था, क्या यही धंधा करना है ज्ञान मार्ग में? तो सोच समझ से जब भी हम कुछ अर्पण करते हैं, तो उनके डायरेक्शन प्रमाण हमको उस चीज को चलाना है, जैसा बाबा चाहता है वैसे चलना है। तब से लेकर के हम 5 थे, ठीक है बच्चे, हमारे फादर ऑलवेज कहते थे मेरे 6 बच्चे हैं, पहले है शिव बाबा, बाकी ये 5 है, और जब वर्षा मिलेगा तो पहले शिव बाबा को मिलेगा, बाकी का उसमें इन लोगों को मिलेगा जो बचा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि से इतने साल तक वो चले। बाबा ने कुछ भी बाद में घटनाएं तो बहुत आई बिजनेस में, बिजनेस भी शिफ्ट किया, थोड़ा बंद किया, बातें तो आती है, रावण की दुनिया है ना। लेकिन बाबा ने कभी भी, मैं आपको बताऊं, कोई भी बात में हमको कमी महसूस नहीं किया है। निश्चय बुद्धि की मैजिक है ये। तो निरंतर योगी बनना है। मैं क्यों ये प्रैक्टिकल बातें आपको सुना रही हूं, क्योंकि लाइफ में ये है ना, ये केवल बुद्धि चलाने की बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है ये चीज, ये दिल की बात है। दिल को खुला करना है। जो दिल की पास्ट की बातें, पेन की बातें आप पकड़ के बैठे हो, उसको भी छोड़ना है। जिसके लिए ज्यादा मोह है उसको भी छोड़ना है। सब कुछ अर्पण, खुला मैदान दे दो बाबा को। बाबा को जो करना है, बाबा ही आपको हील करेगा, बाबा ही आपको चलाएगा, बाबा ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। समझ में आई बात? यहां से शुरू होता है। अभी बाबा अनेक योग की विद्या बताती है हमको, क्योंकि वो शिव बाबा अति सूक्ष्म है और हमारी बुद्धि बहुत मोटी हो गई है। सूक्ष्म चीज को पकड़ के बैठ नहीं सकती है वो बुद्धि, बहुत मोटे रूप की बुद्धि है। नाम रूप में फंस जाती है बुद्धि, ऊपर ऊपर से काम चलाओ काम होता है बुद्धि का। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपकी बुद्धि चलती है और आप अपने आप को राइट समझते हो, ये आप समझ लो ये आपका देह अहंकार है। आत्म अभिमानी सतोगुणी बुद्धि होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है, इतनी नरम होती है, बहुत स्वीट होती है। कभी वो बुद्धि अपने आप को राइट नहीं समझेंगी, जिद नहीं करेंगी कोई बात की। तो आपको अभी अपनी बुद्धि को क्लीन करना है, रिफाइन करना है, और जितना ज्ञान, दुनियावी ज्ञान भरा हुआ है। अभी क्या होता है, मैं वर्तमान समय देखू ना, अभी लोग बाबा का ज्ञान बाहर वालों के ज्ञान से कंपेयर करते हैं। अरे भाई, ये कंपैरिजन का मार्जिन ही नहीं है। इनकी बुद्धि कैसी चलती है और ईश्वर की बुद्धि क्या है, कंपैरिजन ही नहीं है। और इसको मंथन कहते हैं हम। मंथन माना क्या? आप एक ही लाइन लो बाबा की मुरली से, उसके डेप्थ में चले जाओ। बाबा का भाव क्या है इसके पीछे, बाबा की भावनाएं क्या थी जब बाबा ने ये शब्द उचारे, उसका पूरा रस ले लो। मन एक सेकंड में स्थिर हो जाता है। अभी बाहर वाले, दुनियावी वालों के विचार को आप ले लेंगे दिमाग में, वो आखिर मनुष्य आत्मा है ना, आपका भी दिमाग उस तरीके से चलेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी। ये योग का फाउंडेशन नहीं है। योग का फाउंडेशन है एक, एक बस। तो जब भी बाबा हमको अलग अलग योग की विद्या बताते हैं, वो जैसे हमारी बुद्धि को नरम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि वो एकाग्र रहे। और इतनी सारी विद्या बताई है बाबा ने हमको, उसको प्रैक्टिस करने में इतना टाइम लगेगा, आपको टाइम, संकल्प, वेस्ट थॉट्स आएंगे ही नहीं। देखो, पहले बेसिक लेवल पे बाबा ने हमको साफ बताया, बच्चे ड्रामा में साक्षी होकर के सब कुछ देखते चलो। तो पहली अवस्था ये है, ये एक आत्म अभिमानी अवस्था की डायमेंशन है, साक्षी दृष्टा रहना हर बात में। अभी क्या होता है, कुछ हुआ जल्दी रिएक्शन, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, जल्दी मन चलता है। शांत देखते चलो, पहले ऑब्जर्व तो करो। कुछ चीज को समझना है तो थोड़े समय के लिए तो इसको ऑब्जर्व तो करो, क्या है, क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है, क्या जा रहा है। बस तुरंत आपने अपना दिमाग लगा दिया, ये क्या है, हमारा अभिमान है जो हम अनुमान से चलते हैं, जजमेंट के आधार से चलते हैं। जो रियली वाइज सोल है ना, वो कभी तुरंत बोलता नहीं है, वो देखेगा पहले क्या हो रहा है यहां पे, समझेगा बात, जो जैसी है वैसी बात वो पहले समझेगा। इसीलिए लॉयर और जज के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। लॉयर क्या करता है, अपना गाड़ी चालू करता है, बहुत बोलता है। जज बहुत कम बोलता है, क्योंकि उसको पता है उसके थोड़े शब्द में लॉ बनेगा। तो बहुत साक्षी होकर के, सब कुछ देख करके फिर अपना निर्णय सुनाता है। तो आपको लॉयर बनना है या जज बनना है? हाँ, लेकिन हम लॉयर बहुत जल्दी बन जाते हैं ना। कोई सिचुएशन होता है, अरे बहन जी ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके साथ देखो ना क्या हुआ, नहीं नहीं आप देखो, आप जाकर के बताओ ना, किसी का लॉयर बहुत जल्दी बन जाते हैं, है ना। तो पहला है साक्षी दृष्टा की अवस्था। फिर बीच बीच में आपको अपनी बुद्धि को कंट्रोल में लेके आना है। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास, बाबा ने जो हमको फुल स्टॉप का अभ्यास लगाने का अटेंशन बहुत दिलवाया कि बच्चे लास्ट में आपका ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। अभी वर्तमान समय में मैं देखती हूं ट्रैफिक कंट्रोल होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। अरे एक मिनट के लिए रुक करके फुल स्टॉप तो लगाओ, क्या चाहता है आपका इसमें। बुद्धि की शक्ति जमा होती है ना, ब्रेकिंग पावर बढ़ता है ना, तब जाकर के आप अपनी कर्मेंद्रियों को वश में ले सकते हैं। ऐसे कर्मेंद्रियां वश में नहीं आएंगी। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं अशरीरी बच्चे, बीच बीच में कार्य करते हुए कर्म तो करना है, अपने आप को अशरीरी बना दो। नहीं, कभी कभी हम दादी को पूछते थे, दादी बहुत कारोबार है, सिर दर्द होता है, ऐसे नहीं, स्थूल का तो है कारोबार लेकिन दिमाग भी बहुत चलाना है होता है, क्योंकि विदेश के कायदे ऐसे होते हैं। तो दादी हमको कहती थी, आपको बीच बीच में कार्य से पहले बुद्धि को अशरीरी बना दो, करण करावन हार के हवेले रख दो, और जैसे कार्य संपन्न होता है तब बुद्धि को अशरीरी बना दो, सागर में फेंक दो। और आप ये ध्यान रखेंगे बीच बीच में ऐसे बुद्धि को अशरीरी, तो आपको जो भी आपने दिन में किया है उसका इफेक्ट नहीं महसूस होगा। आज के दिन में क्या होता है, हम एक कर्म, दूसरे कर्म, तीसरे कर्म, चौथे कर्म, बीच में ब्रेक नहीं लगाते हैं अशरीरी बोलने के लिए। तो क्या है, वो कर्म का लोड आता है मन पे, उसका जो इफेक्ट होता है मन पे लोड आता है। इसलिए आप दिन के अंत में जाएंगे तो फिर ऐसे बहुत कुछ किया, भारी हो गया, चलो सो जाए, योग भी नहीं करना है, सो जाए। तो बीच बीच में अशरीरी बनेंगे ना, तब करण करावन हर अपना काम करेगा। समझ में आई बात। फिर आती है अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति क्या है, क्या है, बस अपने आप को एंजल महसूस करो और ऊपर आसमान तक जाओ, क्या वो है अव्यक्त स्थिति। हाँ, सूक्ष्म शरीर, लेकिन स्थिति क्या है, अवस्था क्या है। डबल लाइट है। अव्यक्त स्थिति का मूल फाउंडेशन है कि जो भी आत्मा की क्वालिटीज है वो सूक्ष्म है ना, शांति है, प्रेम भावना है, शक्ति है, उसके गहराई में जाकर के आत्मा की लाइट आत्मा की क्वालिटी से निकलती है। समझ में आई बात? वो लाइट ऐसे लाइट का रूप नहीं है जैसे आप समझते हो, वो नहीं, आत्मा की लाइट आत्मा की विशेषताएं है। तो जब आप आत्माएं की विशेषताएं के डेप्थ में जाएंगे, उसको महसूस करेंगे, उसको कार्य में लगाएंगे, तो डबल लाइट रह सकेंगे। माना पीस से काम लेना है, शांति से काम लेना है, प्रेम से काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है। शुरू शुरू में तो दादियां कहती थी, क्या करती थी, छत पे जाकर के एकांत में बैठकर बस एक ही लाइन, मैं शांत चित आत्मा हूं। अभी इतना भी आप करेंगे ना, आपकी सूक्ष्म अवस्था बढ़ती जाएंगी। सूक्ष्मता तो यही है ना, आत्मा की क्वालिटीज है। चलो अभी के वर्तमान समय हमारे दिल में कुछ ब्लॉकेज है, कुछ भरा है दिल में, कुछ दुख है, तो इसको कैसे हल्का किया जाए? बाबा के साथ वार्तालाप करने से। तो जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है ना, जो बाबा के साथ है, वो भी दिल को हल्का करता है। हम क्या करते हैं, सब सामान भर करके यहां रखते हैं, छाती पे रखते हैं। अब बाबा आया है, अरे मुझे तो दे दो ना, मैं यहां आया हूं सब कुछ लेने के लिए। नहीं नहीं बाबा, हम आपको हमारी गंदगी नहीं दे सकते यार। अरे पतित से पावन बनाने के लिए आया है और आप छाती पे सब कुछ बैठ करके लगे, ये क्या है? दे दो। और ये सवेरे के समय पे दिल को हल्का करना है, और खास करके शाम को सोने से पहले। दिल खाली, बुद्धि खाली करके फिर सोना है। कुछ भी हो जाए, खाली करके सोना है, तब डबल लाइट अवस्था रह सकेगी। फिर आती है निराकार, जो हम कहते हैं ना इंग्लिश में इनकॉर्पोरियल, वो है जब घर की स्मृति रहती है, मैं आत्मा हूं, मैं कहां से आई हूं। एक सेकंड में स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाओ। इतना रिफ्रेश होता है, रिफ्रेशमेंट लगती है अंदर से। और जब हम बार बार स्वीट साइलेंस होम में जाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो साइलेंस जमा होती है और वो पूरा नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। निराकार अवस्था से कंप्लीट नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि साइलेंस में उसको खत्म कर रहे हैं। इसलिए वो अभ्यास बार बार चाहिए, बीच में आत्मा कहां से आई हूं, तुरंत अपने घर में लेके स्मृति लेके चलो, वाणी से परे लेके चलो स्मृति को। इतना मजा आएगा, इतने रिफ्रेश हो जाएंगे। दादियां तो हमने देखा यही करती थी, इतनी सारी लंबी चौड़ी क्यों होती थी, दादी जी बैठते थे, जैसे एक व्यक्ति शुरू शुरू में तो दादी एक संतरा मांगती थी, वो खुद छिलका निकाल कर खाती थी, और उस समय अपने आप को बिल्कुल निराकार अवस्था में, अशरी और निराकार अवस्था, जैसे छिलके निकाले, देह भान को निकाला, फिर खाया, फिर शांति से मैं आत्मा, फिर जितनी साइलेंस की शक्ति फिर नेक्स्ट व्यक्ति को मिलती थी। तो एनर्जी बनती है ना साइलेंस में, और साइलेंस कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति जमा होती है। फिर लास्ट है बीज रूप। बीज रूप अवस्था बहुत ऊंची मंजिल है, आप समझ लो पूरा, क्या कहेंगे, हमारा सोल वर्ल्ड, सुप्रीम रीजन, उसको भी हप कर लो, बीज बन जाओ। समझ में आई बात? इतनी सूक्ष्म अवस्था है, भरपूरता की अवस्था है। आप निराकार स्थिति में रहेंगे तो पूरा घर की याद स्मृति रहती है, ये इस स्मृति से भी पार है, बिल्कुल बीज, जिसे पूरा हप करके बीज बन के बैठो। और ये अवस्था तो अमृत वेले ज्यादातर प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि चालू नहीं हुई है। जैसे दिन भर में बुद्धि चालू हो जाती है ना कारोबार में, तभी उसको समेटना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये बीज रूप अवस्था, जितने आप निराकार अवस्था, अव्यक्त, फरिश्ता, अशरीरी का अभ्यास करेंगे ना, तो बीज रूप बहुत जल्दी महसूस होगा आपको सवेरे अमृत वेले के समय पे। और इसी अवस्था में आपके संस्कार परिवर्तन होते हैं, कोई और स्टेज में आपके संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, ओनली बीज रूप अवस्था में। तो आप सोचो कितनी तैयारी करनी है, साक्षी दृष्टा, फुल स्टॉप का अभ्यास, अशरीरीपन, अव्यक्त, निराकार। अभी आपके पास टाइम क्या कहां बचा है? कुछ टाइम बचा है कुछ और करने के लिए? बुद्धि को एक अवस्था से दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था से घुमाओ, बुद्धि को इस देह के मिट्टी में नहीं गिराओ। समझ में आई बात? कुछ भी हो जाए, बातें तो बहुत होंगी, बीमारी होगा, कर्म का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, साक्षी होकर के देखते चलो, बाबा बैठा है ना, क्या इतना भी विश्वास नहीं है कि बाबा हमारा देखभाल करेगा? नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो यहां आत्माएं हैं, यहां आत्माएं, कितने सारे आत्माएं, देखो ना, आत्माओं की दुनिया है ये। लेकिन दिल किसी को देना नहीं है, दिल किसका है? अच्छा, ये तो बहुत थोड़े लोग ने बोला, दिल किसका है? अच्छा, पीछे वाले ने नहीं बोला, दिल किसका है? शोर ना, पक्का ना? फिर बाबा टेस्ट लेगा। हाँ, ड्रामा भी टेस्ट, माया भी सुन रही है, अच्छी तरह से सुन रही है। अच्छा, इनको दिल बाबा को देना है, चलो मैं इसको आगे रखती हूं, अभी देखते क्या होता है इसको। एक बारी प्रॉमिस किया, उस वायदे से, उस व्रत से हटना नहीं है, तब जाकर के आपको बाबा की फुल पालना मिलेंगी। प्रॉमिस किया है ना, प्रॉमिस, वायदा तोड़ना नहीं है, तभी आप बाबा का मैजिक देखेंगे। मैं लास्ट में एक कहानी सुनाती हूं। कहां, जब ही हमारा ऑक्सफोर्ड सेंटर शुरू हुआ, रिट्रीट सेंटर, पहला रिट्रीट सेंटर वो था, तभी हमारे पास कुछ मैनुअल नहीं था कि रिट्रीट सेंटर को कैसे चलावे, ज्ञान सरोवर नहीं बना था, ORC नहीं, कुछ नहीं बना था, पहले तो वही था विदेश में। तो उसको बड़ी मेहनत से माना शुरू हुआ, और हमारे सब घर वाले के कमरे होते थे, तो हमारा कमरा इस स्टेज से 3/4 था, ठीक है, थोड़ा और बड़ा था, और एक जगह पे बाथरूम, और इसमें 3 बिस्तर थे। और उन दिनों में तो रिट्रीट्स बहुत होते थे, जैसे मंडे को शुरू हुआ, वेनसडे को पूरा हुआ, फिर फ्राइडे टू संडे, फिर दोबारा मंडे, ऐसे लगातार रहते थे। तो कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति आते थे रूम में, शेयर करने के हिसाब से भी, के जो खराटा बहुत मारते थे। अभी दिन में हमारी सेवाएं फुल टाइम चलती है, रात को कम से कम थोड़ी स्पेस तो चाहिए ना सोने के लिए, फिर बाजू वाला खराटा मारता है तो क्या करेंगे आप, टेंशन में तो आ जाते थे। तो मुझे तो बहुत हो गया था, क्योंकि हमारे लौकिक में तो हमारा ये समझो पूरा पोर्शन ही हमारा कमरा था, अकेला का कमरा था, और सेंटर में आकर के हमको इतनी सी जगह मिलती थी। तो ये पता नहीं कैसे होता था, बीच में बहुत ज्यादा खराटा मारती थी बहन, ऐसे होता रहता था। तो मैं मेरा बिस्तर सब कुछ पोटला लेकर के बाहर चली जाती थी। फिर ऐसा दिन आया, मैंने सोचा अभी नहीं, अभी ये सहन नहीं हो पाएगा, टू मच है मेरे लिए। मुझे ना रात को नींद मिल रही है, ना दिन में नींद मिल रही है, और सारा दिन पैर पे खड़े रहो, ये कैसे हो सकता है। तो मैं थोड़ा होश में आ गई, मैं बाबा के रूम में चली गई। मैंने बोला बाबा इनफ, इनफ इज इनफ। हाँ, तो ऐसे छोटा बच्चा जैसे रूठ जाता है ना, तो ऐसे जाकर के बैठ गई बाबा के सामने। तो बाबा बड़े बस साक्षी होकर के दृष्टि दिया, फिर ऐसे संकल्प आया, बच्ची याद है वायदा क्या किया था, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, करेंगी ना बच्ची। वो जैसे मुझे उस समय लगा कि बाबा ने मुझे उस वायदे का की स्मृति दी, और जैसे उस वायदे की स्मृति आई, मैंने अंदर से गहरा श्वास लिया और हां बोला। और जैसे हां बोला ना, पूरा टेंशन खत्म। मुझे इतना जैसे आश्चर्य लगा कि जिस अवस्था में बाबा के सामने आई और उस वायदे को मैंने जब स्मृति में लेके आई और हां बोला दोबारा, तब तुरंत जैसे बाबा ने कंप्लीट टेंशन को चूस लिया, जैसे वो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, इंक को चूस लेता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 14 साल तक हम उस कमरे में रहे। तो मैं क्या कहती हूं, हमारे वायदे वायदे की बहुत शक्ति है। व्रत रखना, उसके आधार से ही ईश्वर से पालना मिलती है। बार बार आप अपनी प्रॉमिस को तोड़ेंगे तो आप खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं रख सकेंगे, तो भगवान के निश्चय विश्वास कैसे महसूस होगा। इसीलिए अभी भट्टी में आए हैं, केवल ज्ञान सुनने के लिए नहीं आए हैं, समझने के लिए नहीं आए हैं। कभी कभी ये भी धोखा हो लगता है हमको, बहुत समझ लिया फिर करने में इजी होगा, नहीं ऐसे नहीं है। जो कुछ थोड़ा समझा उसको पहले प्रैक्टिकल में लाओ, करो प्रैक्टिकल में। इसको कहेंगे इंटेग्रिटी। तो इसलिए अंदर दिल खोल करके चेकिंग करो, अभी कौन सा पार्टीशन लगा हुआ है दिल में, कहां बैरियर लगे हुए हैं, और कहां पे मैंने वायदे किए हैं और कहां पे करना है अभी। क्योंकि आप अपना चार्ट देखेंगे ना, तो देखेंगे शायद एक ही प्रॉमिस किया है बाबा को, दूसरा और जगह पे हल्का रख दिया है ताकि आपको मार्जिन मिले अपना काम करने के लिए। क्योंकि वायदा किया तो बंद बंधा माइन हो गई है ना। तो इसलिए इस भट्टी में आए हो और ये स्थान का पूरा फायदा लेना है, तब जाकर के आपकी संकल्पों में शक्ति और दृढ़ता रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो, ओम शांति। Thank you.
ओम शांति। दिल पूरा खाली है, होल बन गया दिल। किस किस का बना? हाँ, पीछे से हाथ उठा रही लंबा। हाँ, दिल से दिली दिल दीदी को हम शुक्रिया कर रहे हैं। यही चाहते थे ना सब, कि हम देही अभिमानी बनना तो चाहते हैं, फायदे भी जानते हैं, बाबा की आज्ञा है ये भी हम समझते थे, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते थे। तो आदरणीय गोपी दीदी ने बड़ी ही दादियों के अनुभव और अपने जीवन के प्रैक्टिकल स्वरूप से हमें जेल से बाहर किया। पहला नंबर कौन सी जेल थी? नाम रूप की जेल। और सबसे सुंदर इटर्नल नाम और इटर्नल रूप सोल कॉन्शियस की पक्की छाप दिल में भर दी। साथ ही साथ बैरियर और बाउंडेज भी खोल दिए। ना बंधन बांधना है, ना बंधन में बंधना है। फिर क्या बचेगा? जो बाबा से हमारी प्रॉमिस की फाइल बड़ी हो गई है, मोटी हो गई है, उस फाइल पर आपने अंतर्दृष्टि डलवाई और सबको याद दिलाया कि हमारा वायदा बाबा से क्या है। मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो, पर दिल के पार्टीशन कितनी जगह हो रहे हैं। वो पार्टीशन को ब्रेक डाउन करने की कला आपने हमें सिखलाई। दादियों के अनुभव कि कैसे अंडरग्राउंड होकर हमें अपने कर्मों को, कार्यों को, सेवाओं को विहंग मार्ग से करना है, निश्चय बुद्धि संपूर्ण निश्चय से करना है कि मैं ही वो आत्मा हूं जिसने कल्प पहले किया है और प्यारे बाबा ने कराया है। प्यारे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण, आदरणीय दादी जी का उदाहरण, और अपने कर्म में जो उन्हें बैरियर्स आए और दादी जी के शिक्षाओं को, बाबा की शिक्षाओं को दादी जी के स्वरूप ने कैसे उन्हें प्रैक्टिकल करना सिखाया। तो ऐसे उन्होंने प्रैक्टिकली रिजल्ट ओरिएंटेड सोल कॉन्शियस स्टेज, फिर अशरीरी अवस्था, फिर अव्यक्त स्थिति और फिर हमारी निराकारी स्थिति और फिर बीज रूप अवस्था। तो दिली दिल क्या सुनते जा रहे थे, करते जा रहे थे, चेक एंड चेंज और खजाने से भरपूर, बोलो, होते जा रहे थे। ऐसा ही किया है ना। और दीदी को दिली दिल क्या हो रहा था? हमारे मन से, वाइब्रेशन से शुक्रिया निकल रहा था, निकल रहा था ना। तो अब जो वर्तमान क्लास सुनते सुनते हमारी स्थिति बनी है, दिल साफ, विशाल दिल, लंबी बुद्धि, दिव्य दृष्टि प्राप्त बुद्धि, उसको सदा बना के रखेंगे और बीज रूप अवस्था अमृत वेले बनाकर हम अपने सारे ज्ञान को हप करके और बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। ये संकल्प जो कर रहे हैं वो एक हाथ का संकल्प लेते हुए हम दीदी को शुक्रिया करें, धन्यवाद करें कि आपने पाश्चात्य की धरनी में जन्म लेकर, पढ़कर, बड़े होकर वहां की विश्वव्यापी सेवाओं को दादी जी के साथ संभाल कर और अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाया है, जो आज हमारी भारत के अंदर भी ये देही अभिमानी अवस्था और उसका विशाल स्वरूप बीज रूप अवस्था बनाकर बाबा की सेवाएं करना और सफलता दिलाना हमारा भी कर्तव्य है। हम अवश्य करेंगे। ऐसी धारणा के साथ, संकल्प के साथ हम पुनः दीदी को, बोलो, शुक्रिया करते हैं। मुझे एक गीत की कविता, बाबा की अव्यक्त वाणी की कविता है ये, उसकी पंक्ति याद आ रही थी दीदी की क्लास सुनते सुनते। मेरे जिम्मे तेरे हर काज संवारूंगा, बाबा की गारंटी है हम ब्राह्मण बच्चों से, मेरे जिम्मे, बाबा कहते मेरे जिम्मे तेरे माना बच्चे के, बाबा के बच्चे के हर काज संवारूंगा, पर तू एक काम कर, 99 काम मैं करूंगा, एक काम आप करो। सस्ता सौदा है ना, बोलो, पर वो कौन सा काम है? अशरीरी बन मुझ बाप को याद। तो जब मैं आपकी ये क्लास सुन रही थी, कविता तो अव्यक्त वाणी पर है, लंबी है, लेकिन ये मुझे बाबा की गारंटी, निश्चय बुद्धि, पूर्ण निश्चय बुद्धि जो दादियों का था, जो आपका वाइब्रेट हो रहा है आपके शब्दों के साथ, तो वो हम बना के रखेंगे। दिल ही दिल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।